आप जो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति की निवृत्ति कैसे हो, तो जो आपकी प्रवृत्ति है, पहली बात तो वो प्रकृति से आपको मिली है, क्योंकि आपका मन, आपका तन, आपकी इंद्रियां, आपका संसार, ये सब प्रकृति के अधीन है। और प्रकृति की रचना प्रभु की रचना है, मनुष्य ने तो प्रकृति बनाई नहीं है। तो इस प्रकृति का स्वरूप ही तीन गुणों से युक्त है, जिसको शास्त्र में कहा गया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गुणों से युक्त जो है प्रकृति की रचना है। सतोगुण हम जानते ही हैं, व्यक्ति के अंदर सद्गुणों की वृद्धि होती है, जो मनुष्य ईश्वर की तरफ चलने की चेष्टा करता है और संसार में दूसरों को सुख देने की कोशिश करता है, इसको सतोगुणी प्रवृत्ति आमतौर पर कहा जाता है। और जो रजोगुणी प्रवृत्ति है, वो संसार में सुख भोगने की लालसा से मनुष्य पुरुषार्थ करता है, पैसा कमाता है और सुखों को बढ़ाने की कोशिश करता है, ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। तमोगुणी प्रवृत्ति वो पाप कर्म के द्वारा नाजायज तरीके से चीज़ों को करता है और उस नाजायज तरीके से सुख भोगने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा अंत में सर्वनाश होता है। तो ये तीन गुण प्रकृति में हैं और इनमें आपस में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, गुण मनुष्य के अंदर चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसमें स्थिरता कभी हो ही नहीं सकती। आप चाहो कि समाज सतोगुणी बन जाए, ना ये कभी राम के ज़माने में सतोगुणी था, ना कृष्ण के ज़माने में सतोगुणी था, ना प्रहलाद के ज़माने में सतोगुणी था, उस समय भी ये तीन गुण थे, आज भी वही तीन गुण हैं। सारा घटनाक्रम यदि इतिहास उठा के देखो तो ऐसे ही चलता रहा है, कभी कोई गुण ज़्यादा होता है, कोई गुण जब कम होता है, बस ये अंतर होता है। अब इन गुणों के वशीभूत होकर मैं संसार में क्रिया करता हूं, और एक और चीज मेरे अंदर मौजूद है जो कमी है, ईश्वर को मैं करता जानता नहीं, करता मैं अपने आप को समझता हूं, मेरी स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब करता समझता हूं, इसी को महाराज जी ने मूल अहम भी कहा, या इसको केवल कर्तापन भी कहा। तो वास्तव में देखा जाए, जीव का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो है ही कर्तापन। इस कर्तापन से मनुष्य के अंदर कर्म करने की वासना पैदा होती है, और वो जो वासना है वो कर्म करने को आपको प्रेरित करती है। अब जब कर्म करते हैं तो उसका फल होता है, फल कभी आपके मन के अनुकूल होता है, कभी आपके मन के प्रतिकूल होता है। यदि अनुकूल फल हो गया तो बार बार उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हो जो अनुकूल फल के कारण आपको मिला, और यदि प्रतिकूल फल होता है तो उसके कारण जो दुख मिला, जो बेचैनी मिली, उसको हटाने की कोशिश करते हो। इसी को राग और द्वेष कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी 100% क्रिया आपकी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हर क्रिया आपके अंदर राग और द्वेष को जन्म देती है। आप राग को कायम रखना चाहते हो, द्वेष को खत्म करना चाहते हो, जो प्रकृति में संभव ही नहीं। 1,00,000 वर्ष की भी आयु क्यों ना दे दिया है, लेकिन जीवन ही आपका यह है, जीने का परिणाम ही यह है कि आपके अंदर राग द्वेष बढ़ेगा, इससे छुटकारा आपका कभी नहीं हो सकता यदि आप प्राकृतिक जीवन जी रहे हो। तो एक तीसरी बात और है, आप अपने आप को जीव नहीं समझते जिसमें कर्तापन है, आप अपने आप को ये जड़ देह समझते हो कि मैं शरीर हूं। अब सतपुरुष कहते हैं कि शरीर और संसार एक चीज है, इसका इन दोनों का उदय एक साथ होता है, लेकिन मेरी कल्पना यह है कि मैं संसार में पैदा होता हूं अर्थात संसार पहले से है, मैं बाद में इसमें आया हूं, जबकि अध्यात्म विद्या कहती है शरीर संसार एक साथ आते हैं, जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है, ये महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है। और इसका प्रमाण, क्योंकि हमको तो प्रमाण चाहिए ना सीखने के लिए, हमारी बुद्धि से तो परे की बात है, तो प्रमाण वो सतपुरुष देते हैं कि आप जब इस समय जागृत हो, यदि आप स्वप्न रचना का विचार करो तो आप ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो कि स्वप्न की रचना मेरे मन का संकल्प था, मेरे मन की कल्पना थी जिससे कि स्वप्न की रचना हो गई। लेकिन स्वप्न की रचना कैसे हुई इसका जरा विचार करके तो देखो, वहां पर आपके पास देह थी या नहीं थी, जिस प्रकार इस समय अपने आप को देह समझ रहे हो स्वप्न में भी आप उस समय अपने आप को देह समझ रहे थे, लेकिन जब देह मिली आपको या देह जब बनी आपकी तो संसार उसी समय पैदा हुआ या पहले से संसार था और आप उस बीच में आ गए उसमें से। सारी सृष्टि की रचना आपकी देह के साथ ही एकदम से तैयार हो गई, जिसमें लोग भी थे, पशु पक्षी भी थे, नहीं मुसीबतें भी थी, सुख भी थे, दुख भी थे, सब कुछ था। जैसी ये प्रकृति है ऐसी स्वप्न की रचना की प्रकृति है, दोनों में कोई भेद नहीं। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, वाणी तो स्पष्ट कह रही जैसे रात्रि का स्वप्न है उसकी रचना है, वैसे ही इस संसार की रचना है, इन दोनों में सत्पुरुषों की दृष्टि में कोई भेद नहीं। यदि कोई भेद है तो यही है कि इस जागृत हालत में आप अपना विकास कर सकते हो और इस मुसीबत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, स्वप्न में ये काम नहीं कर सकते, दोनों में एक अंतर अवश्य। या तो सिस्टमेटिक तरीके से आप गुरु धारण करते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो, उसकी बातें सीखते हो, उस ज्ञान के अनुसार आप चलने की कोशिश करते हो, एक दिन इस चक्र से मुक्ति पा जाते हो। तो इस जागृत हालत में ये अंतर है, लेकिन मैं जो अपने आप को देह करके देख रहा हूं, मैं देह हूं, तो अध्यात्म विद्या कहती है कि देह और संसार ये दोनों एक साथ पैदा हुए, जिस मटेरियल की देह बनी है उसी मटेरियल का ये संसार बना हुआ है। उस मटेरियल को वो कहते 5 तत्व में विभाजित करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब 5 तत्व हैं, उनके 5 गुण हैं, 5 प्रॉपर्टीज हैं इनकी। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आकाश का गुण अहंकार है, अग्नि का गुण क्रोध है, इस प्रकार से 5 तत्वों के 5 ये विकार हैं। तो जब देह मैं हूं, मेरे अंदर ये भाव है, तो ये 5 विकार मेरे हो गए या नहीं हो गए? तो आपका जीवन ही इन 5 विकारों के अंतर्गत चलता है, पूरा का पूरा 100% जीवन जो प्राकृतिक जीवन है आपका वो इन 5 विकार के अंतर्गत चलता है। आपने किसी पर क्रोध किया, आपकी स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई या आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आपने आपके अंदर क्रोध आएगा, स्वाभाविक रूप में आएगा। उस क्रोध का इस्तेमाल किया आपने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और सैकड़ों बार ये काम किया आपने, तो क्रोध का संस्कार गहरा होगा या हल्का हो जाएगा? गहरा होगा, नहीं होगा? तो इसी प्रकार अपन ये पांचों विकार बढ़ेंगे। प्राकृतिक जीवन जीवन जितना आप संसार में जियोगे, ये पांच विकारों की वृद्धि आपके अंदर होगी। और एक चीज और होती है जिसको महाजी समतावलास ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, प्रेमी हर व्यक्ति के अंदर ये पांच विकार होते हैं, परंतु एक विकार सबसे ज्यादा प्रबल होता है, वो उसके जीवन पर छाया रहता है। किसी के अंदर लोभ बड़ा प्रबल होता है, तो देखो पैसे का पीर होगा वो, भाई हुक और क्रुक पैसा चाहिए उसको बस। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, परिवार को भी बेच दें पैसे के लिए, अपने परिवार की हत्या भी कर दें पैसे के लिए, दूसरों की तो करते ही रहते। इसी प्रकार जिसके अंदर क्रोध प्रबल है, वो क्रोध की दूसरों का क्रोध से नाशी करता रहता है। जिसके अंदर अहंकार प्रबल है, वो तो उसको तो नेतागिरी चाहिए, मेरी बात चलनी चाहिए बस, तो अहंकार के लिए वो क्या नहीं करता। तो इस प्रकार से समाज में हम देखते हैं ये पांच विकारों का सारा जो है चक्र संसार में चल रहा है। और किसी किसी परिवार में, किसी किसी देश में या किसी किसी मोहल्ले में आप देखते हैं कि कोई न कोई विकार बड़ा जोर पकड़े हुए होता है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर होता है, ऐसे ही समाज में भी वो ये देखने को मिलता है। तो महाजी कहते हैं कि समाज में जो उथल पुथल दिखलाई पड़ती है, ये इन्हीं पांच विकारों का नतीजा है। तो इसीलिए प्राकृतिक तरीके से आप कुछ भी संसार में क्यों ना कर लो, ये उथल पुथल कभी भी बंद होने वाली नहीं। इसलिए जब से आप दुनिया की हिस्ट्री जानते हो, लड़ाइयाँ होती रही हैं, शासन होते रहे हैं, लोग मरते रहे हैं, लोग मारते रहे हैं, संसार के भोग विलास करते रहे हैं, एक दूसरे को लूटते रहे हैं, एक दूसरे को दबा कर राज्य करते रहे हैं, यही तो संसार का रूप है। आज भी वही रूप, आगे भी यही रहना। क्योंकि जब ये है ही प्रकृति पांच गुणों से युक्त, पांच विकारों से युक्त, तो जीवन ही पांच विकार है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिसके अधीन सृष्टि की रचना है, और ये पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके अंदर सारा का सारा आपका जीवन है। ये मन के संस्कार हैं, मन की वृत्ति है आपकी, समझे, आदतें आपकी हैं, इसी के अंदर सब कुछ इसी के अंदर है, आपका जीवन ही ये है। तो इस जीवन से सांसारिक तरीके पर चलकर कभी आप मुक्ति पा सकते हो क्या? 1% भी कहीं आशा नजर आती है? प्राकृतिक जीवन जैसे जैसे आप जियोगे सांसारिक तरीके से, वैसे वैसे इन गुणों में से या इन विकारों में आपकी वृद्धि ही होनी है, इसमें कमी हो ही नहीं सकती। कैसे होगी कमी, बताइए? तो इसलिए सत्पुरुष कहते हैं, यदि तू इसको मुसीबत समझता है, यदि इस रचना को तू दुख रूप समझता है, तब वो कहते हैं कि जिस प्रकार से इस देह के अंदर मन मौजूद है, वृत्तियां तो मन में है ना, बेचैनी तो मन में है ना, पांच विकार की कल्पनाएं तो मन में है ना, तो जिस प्रकार से ये विकार रूप मन इस देह के अंदर मौजूद है, उसी प्रकार इस देह के अंदर विकार रहित ईश्वर भी मौजूद है। यदि तूने इन वृत्तियों को समाप्त करना है, तो तुझको ईश्वर का विज्ञान सीखना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का विज्ञान है। तो ईश्वर के बारे में वो क्या कहते हैं? ईश्वर सच्चिदानंद है, अर्थात वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। सत कहते हैं उसे जो हमेशा चीज प्रेजेंट है, हमेशा दायम कायम है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं। तो सत का मतलब होता है सत्ता। तो इस सारे ब्रह्मांड में ईश्वर की सत्ता मौजूद है। ईश्वर की सत्ता के कारण यह प्रकृति की सत्ता भी कायम है। इसी को महाजी ने समता विलास में लिखा है कि समता के बगैर एक कण भी एक अणु भी नहीं टिक सकता। तो सारी सृष्टि में उस ईश्वर की सत्ता कायम है जिसमें परिवर्तन नहीं है, सदैव स्थायी है। तो ये ईश्वर का गुण है। दूसरी बात क्या कहते हैं, चित। चित कहते हैं कॉन्शियसनेस को, चेतना को। वो ईश्वर क्या है, वो चेतन शक्ति है। उसमें चेतना है, उसमें कॉन्शियसनेस है, बाकी सब जड़ है। आपके मन में होश है क्या? आपको मन के प्रति होश है, मन आपको नहीं जानता, आप मन को जानते हो। तो मन जड़ है, मैं चेतन। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव भी ईश्वर का अंश है। क्यों अंश है? क्योंकि इसमें चेतना है। चेतना कहीं से तो आई होगी, तो चेतना वहीं से तो आएगी जहां चेतना होगी। तो चेतना इस सारी सृष्टि में केवल ईश्वर में। तो इसीलिए उस चेतना का अंश मेरे अंदर मौजूद है और इसकी पहचान किस रूप में होती है? गुरु को कहते हैं गुरु सर्वव्यापक है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, गुरु सदैव रहता है। और गुरु बाहर नहीं है, वास्तव में गुरु अंतर्यामी है। सदगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। तो अंतर कैसे पता लगता है? हम सब यदि महाराज जी के सामने बैठे हों, मैं जानता हूं कि मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूं, लेकिन गुरु जानता है कि सब मन में क्या सोच रहे हैं। किसी के मन की बात बता देगा वो। एक बात आपने पढ़ी होगी महाराज जी के प्रेमी देवराज जी की बात। देवराज जी महाराज के सामने बैठे हुए थे, मन में सोच रहे थे महाराज जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, तो महाराज जी समझ गए ये क्या सोच रहा है। बोले प्रेमी क्या सोच रहे हो? अब वो झेप गए, क्या बताएं? बोले महाराज जी कुछ नहीं। तो महाराज कहते हैं प्रेमी हम बताएं क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि गुरु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। कहो तो यहां दरिया बहा दे, लेकिन दरिया तो तुमने देखा है। कहो तो यहां शेर खड़ा कर दे, लेकिन वो भी तुमने देखा है। लेकिन तुमने कभी एक बात नहीं सोची, तुमको भूख लगती है इनको भूख नहीं सताती, तुमको प्यास लगती है इनको प्यास नहीं सताती, तुमको नींद लगती है इनको नींद नहीं सताती। तो भूख प्यास नींद से जो ऊपर है, इससे बड़ा और क्या करिश्मा देखना चाहते हो? अब उनकी आंखें खुली, हाँ वास्तव में इससे बड़ा करिश्मा क्या हो सकता है? ऐसा तो इंसान देखा ही नहीं जो भूख प्यास नींद से ऊपर। तो अब बताओ मुझे, गुरु को देखकर या गुरु की बातें पढ़कर उस पर गहराई से विचार कर आप इस निर्णय पर पहुंच जाओगे गुरु ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सबके बारे में सब कुछ जानता है। मैं जानता तो हूं, लेकिन अपने मन के मन तक ही मेरी सीमा है। बस मेरे मन में क्या चल रहा है मैं जान सकता हूं, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता। तो इसका मतलब ये गुरु सबके प्रति चैतन्य है, मैं अपने प्रति चैतन्य हूं, और विकारों के चक्कर में पड़ के अपनी प्रति भी मैं गफलत में रहता हूं। तो ईश्वर चित, इसको चित कहते हैं। और तीसरा गुण क्या है ईश्वर का? आनंद रूप है। आनंद क्यों है वहां पर? तीन गुणों का प्रभाव नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, पांच विकार का ईश्वर पर प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहां मंद नाम की सत्ता ही नहीं है। तो दुविधा तो मन के कारण है ना, तो इसीलिए वो सदैव एक रस है, आनंद रूप है। वहां दुख का, क्लेश का, बेचैनी का प्रवेश तक नहीं। और जीव को यही चाहिए कि दुनिया का एक भी संकल्प मेरे मन में ना उठे। संकल्प उठेगा तो कर्म करोगे, कर्म करोगे तो उसका फल होगा, फल द्वंद्व रूप होगा, प्रकृति का स्वरूप ही है ये। कर्म करते ही आपकी बेचैनी का जन्म हो गया, और जितनी देर आप होश में रहते हो या जागृत हालत में रहते हो करते ही रहते हो। कर्म नहीं करोगे तो कर्म की प्लानिंग करोगे आप, किसी से ईर्ष्या द्वेष करोगे, किसी के बारे में सोचोगे, तो आप जितनी देर जागोगे मानसिक बेचैनी लेकर जियोगे। ये आपकी स्थिति है, इसको क्योंकि आप सोचते नहीं इस तरह से, इस तरह से इसको देखते नहीं, इस तरह से इसको जानते नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज्ड रहते हो। तो आप दुखी हर समय ही, दुखी हो हर समय ही, बेचैन हो। इस बेचैनी को दूर करने के लिए आप कोई ना कोई एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हो। कभी सोचते हो चलो किसी से बात कर ले, बेचैनी कम हो जाएगी। कुछ खा लें, बेचैनी कम हो जाएगी। कहीं घूमने चल चलें, बेचैनी कम हो जाएगी। आप आइटम्स जो है वो तलाश करते, तो आपको ये पता नहीं आता मैं तो, मेरा स्वरूप ही बेचैनी का है। जब जीव के अंदर चेतना छोड़कर कर्तापन आ जाता है, या चेतना के साथ कर्तापन भी आ गया, और देह को इक्विपमेंट समझने की बजाय, यंत्र समझने की बजाय मैं इसको अपना स्वरूप समझने लगा, तो पांच विकार भी मेरे अंदर आ गए, तो मेरा जो जीवन है तीन गुण और पांच विकार से युक्त हो गया। अब ये आठों मिलकर बेचैनी के अलावा मुझे कुछ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इन सब में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और मैं मदहोश हूं। सुख के नशे में जी रहा हूं, तो इन आठ चीजों में कहां सुख है, जरा विचार करके तो देखो। तो महाजी कहते हैं कि सुख के वहम में या सुख की आशा में जीव लंबा दुख संसार में भोगता है। इसीलिए संसार से जब ये विदा होता है तो बेचैनी लेकर संसार से विदा होता है, क्योंकि इसी की तो कमाई की थी उसने। तो अब बताइए, ये आपके जीवन का फेल्योर है या जीवन की सक्सेस है? हम बड़ी बड़ी कल्पना अपने बच्चों के बारे में बनाते हैं, अपने बारे में बनाते हैं, देश के बारे में बनाते हैं। तो महाजी कहते हैं, प्रेमी, ये जो ज्यादा चमक धमक जो है देश के अंदर या संसार में, और इसकी उन्नति करना चमक धमक की, ये भविष्य में सर्वनाश का कारण बनती है। क्योंकि जितना भोगवादी जीवन बढ़ाओगे, जितना भोगों का डेवलपमेंट करोगे आप, उतनी वासनाएं लोगों के अंदर बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? वासनाएं बढ़ेंगी तो वासनाएं इन्हीं पांच विकार की तो होंगी। वो तो पांच विकार जब मनुष्य में बढ़ेंगे तो आपस में प्रेम करेंगे या लड़ेंगे? तो इसीलिए जब ये उन्नति मर्यादा को पार कर जाती है तब देश चौपट हो जाता है। लोग आपस में ही स्वार्थ के कारण लड़ने मरने लगते हैं, और जो उन्नति उन्होंने बड़ी मेहनत से की थी सैकड़ों वर्षों में, वो कुछ ही दिनों में अपने हाथों से उसका सर्वनाश कर देते हैं। पूरे दुनिया का इतिहास देख लो, हर कंट्री जिसने विकास किया उसका यही यश हुआ, चाहे वो इंग्लैंड रहा हो, उसका भी क्या विश्व युद्ध में क्या सर्वनाश हुआ, चाहे जर्मनी रहा हो, उसका भी विश्व युद्ध में क्या सर्वनाश हुआ, चाहे इराक रहा हो, उसका भी हाल आपने देख लिया, चाहे यूनान रहा हो, उसकी भी हिस्ट्री भी यही रही, सर्वनाश हो गया उसका भी। तो जो जो देश ऊपर उठता है भोगवाद में, वो एक दिन उसका समझ लिए, उस जैसे जैसे तीव्र गति से जो आगे बढ़ रहा है, याद रखिए तीव्र गति से उसके सर्वनाश का वक्त नजदीक आ रहा है। तो ये एक देश की बात भी यही है, और ये एक व्यक्ति की बात भी यही है। इसलिए इस प्राकृतिक रचना में यदि कोई चैन की जिंदगी जीना चाहता है, और उस चैन की जिंदगी की अपने बच्चों के बारे में कल्पना करता है या अपने बारे में कल्पना करता है, तो याद रखिए उस व्यक्ति ने इस प्रकृति को जाना ही नहीं, अपने जीवन को जाना ही कुछ नहीं, वो घोर अज्ञानी है, गहरे अंधकार में जी रहा है। इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए मिला है। तो मानुष जन्म की सफलता इसमें है। मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे यह दुर्लभ जीवन पाए। वाणी ऐसे ही नहीं करिए, ये बात दुर्लभ जन्म है ये मनुष्य। हम कैसे ईर्षा द्वेष में क्रोध में एक दूसरे से लड़के खत्म कर देते हैं। तो विचार करने की बात यह है कि हम यदि अपनी वृत्तियों को ठीक करना चाहते हैं, वृत्तियों का मतलब होता है अपने मन के संस्कारों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी आदतों को ठीक करना चाहते हैं, और ठीक करने का मतलब क्या होता है, हम जिंदगी में चैन चाहते हैं। और ठीक करने का क्या मतलब होता है, हम जिंदगी में चैन चाहते हैं। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि प्रकृति में चैन नहीं है, प्रकृति का स्वरूप ही बेचैनी युक्त है। क्योंकि जब कुदरत की रचना है ये, कि प्रकृति की रचना ही उन्होंने सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से बनाई है, तो इसमें चैन कैसे हो सकता है। तो इसलिए चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मानव हैं, आप सबको देख लो बेचैनी लगे, जीते नहीं जीते। मनुष्य तो सोच समझ के प्लानिंग करके पाप करता है, पशु बिना सोचे समझे पाप करते रहते हैं। लेकिन पाप करने के बाद भी उनको पाप लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बुद्धि के अधीन होकर काम नहीं कर रहे हैं, केवल मन के स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से। जैसे हवा चल रही है प्राकृतिक रूप से, बादल बरस रहे हैं प्राकृतिक रूप से, तो प्रकृति में जो भी घटनाक्रम घट रहा है वो एक तरह से ऑटोमेटिक घट रहा है। लेकिन मनुष्य के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी बुद्धि में होश है, ये चाहे तो ईश्वर बन सकता है, चाहे तो ये मनुष्य जन्म भी अपना छिनवा सकता है, पशु योनि में प्रवेश कर सकता है। सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार यदि जीवन व्यतीत नहीं किया तो इसकी मनुष्य योनि भी छिन जाती है। यदि ये वास्तव में शरीर होता तो शरीर की मृत्यु हो जाती है, झंझट खत्म हो जाती। लेकिन मनुष्य के बारे में सत्य यह है, सारे शास्त्र इसको जीव कह रहे हैं, जो इस देह और अपने मन को सुख प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इनके कारण सुखी और दुखी हो रहा है। तो जीव जिंदा वस्तु है, इसीलिए जब देह की मृत्यु होती है तो जीव अपने इस मन को साथ लेकर इस देह को छोड़ देता है। और ईश्वर के ही नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार, तुरंत ही इसके मन के अनुसार, मन में जो संस्कार इसने बनाए इस जन्म में, उन संस्कारों के अनुसार, उस कर्म फल के अनुसार इसकी नई देह तुरंत ही तैयार हो जाती है। अब वही पुराना मनुष्य है, वही पुराना जीव है ये, अब नई देह में ये जिन कर्मों का फल ये पास्ट में नहीं भोग पाया उस देह में कर्मफल भोगता है। और जो प्रारब्ध इसको दिया गया उस देह में ईश्वर के द्वारा, उस प्रारब्ध के अनुसार ये मजबूरी में कर्म करता है। तो कितनी लाचारी के साथ, कितनी गुलामी के साथ ये मनुष्य जीवन व्यतीत करता है। समझता तो यह है कि मुझको हर तरह की आजादी होनी चाहिए, और इसीलिए संघर्ष करता है सबसे। लेकिन सत्य इसके बारे में यह है, ये नेचुरल फैक्ट है कि मनुष्य पूरी तरह से गुलामी का जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसका जीवन प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि स्वतंत्रता वहां है इसकी। शरीर में तो पराधीनता है इसके अंदर, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जैसी परिस्थितियों में शरीर पैदा होना है वैसी पैदा होगा। ये जो कुछ शरीर से करना है वो शरीर को करना पड़ेगा, और तू अपने आप को जब शरीर समझ रहा है तो ये सारा कर्म तेरा हो जाता है। इसीलिए जीव ने गुरु ज्ञान के द्वारा, शास्त्र विद्या के द्वारा यही सीखना होता है कि पहले मैं जीव हूं, पहले ये सीखता है। मन मेरे लिए मुसीबत है, ईश्वर मेरे लिए वरदान है, ईश्वर मेरे लिए अमृत है। और जिस प्रकार इस देह के अंदर मेरा मन मौजूद है, उसी प्रकार इस देह के अंदर मेरा ईश्वर भी मौजूद है। ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में चैन है, ईश्वर में, ईश्वर जो है ये पांच विकार तीन गुणों से स्वतंत्र है, मुक्त है। मुझे यही चाहिए। तो इसीलिए निरंतर जब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ये अपने संसार को सिकोड़ने की कोशिश नहीं करता, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करता, तब तक उस ईश्वर की तरफ ये बढ़ेगा कैसे? तो अपनी कामनाओं को वो ये मर्यादा में ले आता है, इतनी मर्यादा में ले आता है धीरे धीरे अभ्यास करते करते कि केवल इसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहे, इसी में ये संतुष्ट रहता है। बाकी लोग जो भोगते हैं भोगते रहे, उससे उससे इसका वास्ता नहीं होता। तो महाराज जी इसीलिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि प्रेमी ये जो वृत्तियां हैं तेरे मन की, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त है और तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इनको तूने यदि ठीक करना है तो इन पांच नियमों का पालन तूने करना होगा। सादगी उन्होंने इसीलिए कहा, पहला नियम सादगी का मतलब ये है कि इन कामनाओं को जब दुख रूप तू समझता है तब इनसे पीछे हटने की कोशिश करता है। तो कामनाओं को मर्यादा में लाना और धीरे धीरे अभ्यास करते करते, आदत बदलते बदलते इतनी कम कर लेना कि मूलभूत आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाए, बस सादगी हो गई। सत्य का मतलब यह है कि एक ईश्वर पर भरोसा करना कि तेरे जीवन को सुख देने वाला, दुख देने वाला, सारी परिस्थितियां पैदा करने वाला वो परमेश्वर है। तेरे अपराध के अनुसार वो सारी परिस्थितियां तेरे सामने आएंगी, इसलिए तू चालाक और बेईमान बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि चालाकी और बेईमानी से हम क्या करते हैं, दूसरे को अपने मन के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे अंदर जो भी वासनाएं हैं दूसरों के द्वारा पूरी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो चालाकियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं, और किसी नहीं करते। तो जिसने इस मार्ग पर चलना है, सादगी का सूत्र जिसने अपनाना है, वो ये बेईमानियां चालाकियां करके क्या करेगा? वो तो एक ईश्वर पर भरोसा रखकर ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। दुनिया क्या करती है उसकी फिक्र नहीं होती उसको, अपने को देखता है कि मैंने ईश्वर के मार्ग पर चलना है, दुनिया से मेरा वास्ता नहीं। तो इसीलिए अंदर की यात्रा करने के लिए वो ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है, किसी के साथ छल कपट वो नहीं करता। तीसरी बात, वो सेवा की करते हैं, सेवा की इसलिए करते हैं, मेरी आदत ही है स्वार्थ के लिए जीना। परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, हर व्यक्ति के बारे में ये सोचता हूं मैं, ये मेरे लिए क्या करना चाहिए, इसको जिसको अधिकार कहते हैं ना, सब के ऊपर मेरा क्या अधिकार बनता है, वह यही सोचता है। तो हर जगह वो सुख टटोलने की कोशिश करता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि तू सेवा भाव से जीना सीख, क्योंकि स्वार्थ वृत्ति है ना, और स्वार्थ वृत्ति पांच विकार वाली होती है, स्वार्थ वृत्ति पांच विकार से युक्त होती है। ये विकार तेरे लिए मुसीबत है, तूने इनको खत्म करना है। तो तू स्वार्थ का जीवन जिएगा या परमार्थ का जीवन जिएगा? तो अपने दुख को भूलकर उसके लिए तो सोच ले कि प्रभु ने उसका विधान बना रखा है, तेरे जीवन में क्या अच्छे दिन आएंगे क्या बुरे दिन आएंगे, उसके अनुसार तेरे साथ व्यवहार होगा, लोगों का भी और प्रकृति का भी। लेकिन तूने जो है यही दृष्टि रखनी है कि मेरे सामने जो जीव है उसको क्या दुख है, मैं उसका क्या दुख दूर कर सकता हूं, इस वृत्ति के साथ तूने जीना है। ये सेवा भाव है, और वो भी किस रूप में? निष्काम रूप में। पीछे यदि आपने रख लिया कि मैं इसके साथ अच्छा करूंगा, कल को ये मेरे साथ अच्छा करेगा, तो फिर स्वार्थ हो गया, फिर तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया कि फ्यूचर में मुझे रिटर्न मिलेगा इसका। रिटर्न मिलेगा तो पांच विकार के रूप में तो मिलेगा तुझे। सोच ले, प्रकृति में रिटर्न मिलेगा तो पांच विकार के रूप में ही मिलेगा, तो क्या करेगा तू उसका? तूने तो ईश्वर की भक्ति करनी है ना, कामना को खत्म करना है। तू तो वृत्ति के सुधार की बात कर रहा है, मन की वृत्ति को बदलने की बात कर रहा है ना, छुटकारा पाने की बात कर रहा है। तो वृत्ति तो तेरी पांच विकार से युक्त है, इसीलिए तूने निष्काम सेवा करनी ही करनी है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चौथी बात, वो सत्संग की करते हैं। सत्संग की क्या है? यही विज्ञान। यदि मैं नहीं सीखूंगा तो मेरी बुद्धि का निर्णय कैसे बदलेगा? इन विकारों को यदि विकार रूप ही नहीं देखूंगा तो इनसे मुक्ति पाने का प्रयास मेरा कैसे होगा? तो धीरे धीरे ये सारा विज्ञान मैं गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जब मैं सीखता हूं, उनके इतिहास से, उनकी पुस्तकों से, उनकी बातों से, तो इसका नाम है सत्संग। इसमें स्वाध्याय भी आ जाता है और इसमें श्रवण भी आ जाता है। तो फिर ये चारों प्रोग्राम किस वास्ते हैं? ईश्वर तक पहुंचने के लिए। तो ईश्वर अंदर है, मैं भी इस देह के अंदर मौजूद हूं, और मेरी मुसीबत जो मेरा मन है वो भी इस देह के अंदर मौजूद है। तो मैं हर वक्त मन के संकल्पों की याद करता हूं, इसके मुकाबले में मैंने ईश्वर की याद करनी है। तो इसीलिए पांचवा नियम सिमरन गुरु ने दिया कि सिमरन के द्वारा तो ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे जब मैं गुरु मंत्र का, जिस प्रकार के हम महामंत्र का एक सिद्ध मंत्र का जाप करते हैं, हमारे लिए वो गुरु मंत्र है। तो सिद्ध मंत्र का मतलब ये होता है वो ईश्वर की मैनिफेस्टेशन है, ईश्वर का मंत्र रूप में अवतार है। इसलिए उसमें इतनी शक्ति है कि मन की सफाई, मन के संकल्पों को, मन के संस्कारों को, मन की वृत्तियों को ये मंत्र 100% साफ कर सकता है। और सफाई का मतलब यह है कि मन वृत्ति रहित हो जाता है, वो स्थिति होती है ईश्वर दर्शन की, ईश्वर से मिलन की, वो स्थिति होती है हमारे मोक्ष की, मन से, प्रकृति से परमानेंट मुक्ति और उस आनंद रूप परमेश्वर के साथ परमानेंट मिलन। तो इसलिए मन को वृत्ति रहित करने के लिए, या वृत्तियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, या बेचैनी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यही रास्ता है। इसको सीखें और उस पर चलें, तभी मानव जीवन की सफलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।